आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
नमस्कार, मैं हूं नताशा कॉल SBS हिंदी टीम से। 2025 का पहला झटका 7 जनवरी को महसूस किया गया जब दुनिया के 3 देशों में, जिनमें शामिल हैं तिब्बत, नेपाल और भारत, यहां एक साथ भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र चीन के कंट्रोल वाले तिब्बत में था, जिसकी रिक्टर स्केल पर तीव्रता 7.1 मापी गई। इस भूकंप के झटके से 100 से भी अधिक लोगों की जानें जा चुकी हैं। इसी के चलते आज हम जुड़ रहे हैं डॉक्टर रोहित तिवारी से, जो यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स में सिविल और पर्यावरण इंजीनियरिंग स्कूल में एक लेक्चरर हैं, और आज हमें बताएंगे कि ऑस्ट्रेलिया को भूकंप से कितना खतरा है।
SBS हिंदी प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है रोहित।
धन्यवाद
रोहित। भूकंप की बढ़ती घटनाओं ने लोगों को आज सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर विश्व में अचानक भूकंप की घटनाएं बढ़ कैसे गई हैं और इतने झटके क्यों आ रहे हैं, तो आप हमें एक एक्सपर्ट होने के नाते इसके बारे में क्या बता सकते हैं?
भूकंप जो है ये आज से नहीं, ये जब से आपका प्लेट टेक्टोनिक का मूवमेंट हुआ है, जब से ये अर्थ की संरचना हुई है, तब से ही प्लेटों के मूवमेंट की वजह से ये आते रहे हैं, और इनका बढ़ना या घटना ये प्लेट के मूवमेंट पे डिपेंड करता है
जी।
अब इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स जो अर्थ साइंटिस्ट ने दी है, उसके हिसाब से जो अर्थ का जो क्रस्ट है उसके नीचे जो मोल्टन मास है, जो लावा है, उस वो ऊपर वाला जो क्रस्ट है वो उसको नीचे की तरफ धकेलता है, और उसकी तरफ वजह से जो प्लेट्स है उनका मूवमेंट होता है। अब ये जो प्लेट्स का मूवमेंट है ये एक तरफा भी हो सकता है कि दो प्लेटें एक दूसरे की ओर जा रही हैं, जैसे इंडियन प्लेट और जो तिब्बतियन प्लेटो है, यूरेशियन प्लेट वहां पे, तो वो इंडियन प्लेट जो है वो तिब्बतियन या यूरेशियन प्लेट के नीचे की तरफ धकेल दी। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हिमालय जो है उसकी हाइट हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ जाती है। अब इनके नीचे जो रॉक्स है इस मूवमेंट की वजह से वो स्ट्रेन में आ जाती है, या आप ये समझिए कि उनमें थोड़ा तनाव पैदा होता है, और हम ये बात कर रहे हैं जमीन से करीबन 100-200 किलोमीटर, 50 किलोमीटर नीचे की। इतने ज्यादा स्ट्रेस में वो रॉक रहती हैं, और जब वो अपने उस तनाव को झेल नहीं पाती हैं या सहन नहीं कर पाती हैं तो वो टूट जाती हैं, और ये इसको हम रप्चर बोलते हैं इंजीनियरिंग में। और ये रप्चर की वजह से जो वेव्स है वो ट्रेवल करती है टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस, और उसकी वजह से ट्रेमर्स आते हैं। लेकिन जो अर्थक्वेक है ये कभी भी बहुत ही रेयर चांस है कि अर्थक्वेक की वजह से किसी की जान जाएगी। लोग ज्यादातर जो कैजुअलिटी होती है, जान जाती है, वो मलबे में दबने की वजह से जाती है या किसी चीज उनके ऊपर गिर जाती है। जैसे कि आप 2001 में जो इंडिया में भुज का अर्थक्वेक आया था, अगर आप उसको देखेंगे तो जो अर्थक्वेक के बाद जो विशेषज्ञों की टीम वहां गई तो उसमें ये पाया गया कि जो 90% या उससे ज्यादा घर जो टूटे हैं वो घर हैं जो कि नॉर्मल बिना इंजीनियरिंग के ब्रिक मैसनरी से बनाए गए थे, क्योंकि उनका वेट ज्यादा होता है। जितना ज्यादा वेट होगा उतना ज्यादा अगर नॉन इंजीनियर्ड स्ट्रक्चर है, जैसे कि आपका ईटों के घर है या फिर नॉर्मल रबल या जिसको हम साधन मसा में कहेंगे तो पत्थरों से बनाए हुए घर है, तो उनका नुकसान ज्यादा होता है। लेकिन अगर आप रेनफोर्स कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर देखेंगे जिसमें आपका बीम कॉलम की एक संरचना होती है, या फिर वुडन स्ट्रक्चर देखेंगे उनमें वेट कम होता है, तो उनकी वजह से जो डैमेज है उसमें कम होती है। अब अगर आप अभी रिसेंटली जो अर्थक्वेक आया हुआ है तिब्बत में, उसमें भी अगर आप उसकी इमेजेस देखेंगे, जैसे नेपाल में कुछ सालों पहले अर्थक्वेक आया था बहुत ही विनाशकारी, तो उसमें भी जो टाइम जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो संरचना जो ढह गई थी वो नॉन इंजीनियर थी। तो उस ये जो नॉन इंजीनियर संरचना है, इसके लिए आपको बहुत ही भयावह भूकंप की जरूरत नहीं है। इवन एक मॉडरेट सेस्मिसिटी में भी अगर ये स्ट्रॉन्ग नहीं है तो इसमें क्रैक आ सकते हैं, और ये पुराना है तो ये ढह भी सकती है। तो ये लोगों को सोचने की आज जरूरत है, अपने अपने जहां पे भी हम रहते हैं वहां पे आपको एक बार देखने की जरूरत है कि आपका ढांचा किस तरीके का है, उसमें कोई क्रैक्स तो नहीं है, या फिर अगर वो ब्रिक है तो कितना पुराना ब्रिक मशीनरी है। तो आप एक स्ट्रक्चर इंजीनियर की किसी की एडवाइस ले सकते हैं कि उसको किस तरीके से आप भूकंप रोधी बनाए या फिर उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाएं, ताकि भूकंप आने की स्थिति में अगर वो घर टूट भी रहा है तो आप लोग को इतना टाइम मिले लोगों को कि वो घर से बाहर निकल जाए।
जी रोहित, हमें ये भी बताएं कि ऑस्ट्रेलिया को भूकंप से कितना खतरा है, कौन सा शहर है जो सबसे ज्यादा खतरे में है?
ऑस्ट्रेलिया में अगर आप देखा जाए तो ये एक लो टू मॉडरेट सिस्मिक सिटी है, जो कि जो मैंने पहले उदाहरण दिया था जो इंडो यूरेशियन प्लेट का, उससे बहुत ही अलग है। तो इसमें क्या है कि जो प्लेट है वो स्ट्रेन हो रही है लेकिन वो किसी और प्लेट से टकरा नहीं रही है। अब उस स्ट्रेन की वजह से जो ऑस्ट्रेलिया के जो नीचे रॉक्स हैं अभी वो आप लगातार तनाव में है, लेकिन ये जो तनाव है ये बहुत ही कम है कंपैरिजन टू जो इंटरप्लेट मूवमेंट होता है जैसे कि इंडो यूरेशियन प्लेट का है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया में अर्थक्वेक नहीं आएंगे या नहीं आते हैं
जी।
या अर्थक्वेक आएंगे लेकिन उसको हम लो टू मॉडरेट सेस्मिसिटी बोलते हैं। तो लो टू मॉडरेट सेस्मिसिटी में क्या है कि यू कैन बी आप मतलब आप लोग को 7 to 7.1 या 6, 5.5 to 7.1 ये इस तरीके का आपको अर्थक्वेक हो सकता है या उससे कम भी हो सकता है। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि ये जो छोटे भूकंप है या फिर कम सेस्मिसिटी के भूकंप है ये नुकसान नहीं करेंगे, ये भी नुकसान करेंगे। और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि ऑस्ट्रेलिया अगले ग्रेट ऑस्ट्रेलियन अर्थक्वेक के लिए तैयार है या नहीं है, और ये हम लोग को आज सोचना होगा क्योंकि साउथ ऑस्ट्रेलिया जो है वो भूकंप के लिए थोड़ा सेंसिटिव है। इवन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया पर्थ में 1968 में मैकेरिंग करके एक जगह है वहां पे एक अर्थक्वेक आया था, लेकिन लकीली वो शहर से दूर था और जहाँ पे मेनली जो फॉल्ट था वो वहां पे ऑलमोस्ट बहुत ही कम लोग रहते थे तो इसलिए ज्यादा विनाशकारी वो कम नहीं हो पाया। लेकिन आज की दृष्टि में अगर आप सिडनी को देखेंगे तो सिडनी को वर्ल्ड की जो इंश्योरेंस कंपनी है वो टॉप 10 एक्सपोजर साइट में रखती है अर्थक्वेक की दृष्टि से। बिकॉज हम लोग मेरा ये मानना है और मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि हम लोग अभी एक नेक्स्ट ग्रेट ऑस्ट्रेलियन अर्थक्वेक के लिए अभी तैयार नहीं है, क्योंकि अगर आप सिडनी को देखेंगे यहाँ पे या फिर और जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है ऑस्ट्रेलिया की तो उसमें ज्यादातर जो घर है वो 2 स्टोरी 3 स्टोरी है, मोस्टली ब्रिक मैसनरी है, कोई आपका रेनफोर्स कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर नहीं है। और अगर आप भुज से इनको कंपेयर करेंगे तो भुज में यही स्ट्रक्चर इसी तरीके के जो स्ट्रक्चर थे ब्रिक मैसनरी वो ही सबसे ज्यादा डैमेज हुए थे। तो हम लोग को ये सोचना होगा, गवर्नमेंट को ये प्लान करना होगा कि हर एक बिल्डिंग का एक सर्वे कराया जाए और स्ट्रक्चर इंजीनियर्स आके उसको देखें और हम लोग को ये एक वो करे कि कितना एज हो गया है बिल्डिंग का। अगर 50 साल 100 साल या 75 साल से पुरानी बिल्डिंग है तो उसको एक रेट्रोफिटिंग की जरूरत है, वो करना चाहिए। तो इसके लिए अभी हमें लगता है ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा सा और सुधार की जरूरत है हमारे जो नियामक है, लेकिन गवर्नमेंट काम कर रही है, नया कोड अभी रिसेंटली रिवाइज हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम लोग को इस पॉइंट से सोचने की कि हम लोग अगले ऑस्ट्रेलिया अर्थक्वेक के लिए तैयार हैं या नहीं।
जी रोहित, यहाँ मैं पूछना चाहूंगी कि ऑस्ट्रेलिया में हाई राइज बिल्डिंग्स भी हैं, ब्रिजेस भी हैं, सिडनी हार्बर ब्रिज है, तो कौन से ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, कौन से ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो सबसे ज्यादा खतरे में हो सकती हैं?
देखिए जो रेनफोर्स कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर्स हैं वो तो नॉर्मली उनमें डक्टिलिटी ज्यादा होती है। डक्टिलिटी को आप इस तरीके से समझिए कि जैसे कोई चीज कितना जो वॉल्यूमेट्रिक चेंजेस है या फिर उसमें जो स्ट्रेन जब पड़ती है तो अपने शेप को कैसे बरकरार रखती है। तो जो डक्टाइल नेचर है वो स्टील में ज्यादा होता है रेदर देन कॉन्क्रीट के कंपेरिजन में। तो जो भी रेनफोर्स कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर्स हैं वो अर्थक्वेक में अच्छा ही परफॉर्म करेगा क्योंकि वो डिजाइन होता है अर्थक्वेक के। तो जो ब्रिजेस है की आप बात करें, जो हाई राइज स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं तो वो उनमें अर्थक्वेक लोडिंग को कंसिडर किया जाता है। तो अगर कोई बहुत ही बड़ा डिजाइन फॉल्ट नहीं है, कंस्ट्रक्शन फॉल्ट नहीं है, डिटेलिंग अच्छे से नहीं करी गई है तो ही कोई डैमेज होगी। अदरवाइज बहुत रेयर चांस है कि इतना बड़ा स्ट्रक्चर एकदम कोलैप्स हो पाए। ऐसा नहीं है कि स्ट्रक्चर कोलैप्स नहीं हुए हैं, पास्ट में जापान में रेनफोर्स कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा कोलैप्स हुए हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि कोई डिटेलिंग की कमी या फिर फाउंडेशन और जो सुपर स्ट्रक्चर है उसका कनेक्शन प्रॉपर नहीं है तो भी स्ट्रक्चर जो है वो फेल हो जाता है।
जी आखिरी सवाल रोहित, कोई ऐसी चेकलिस्ट आप हमें बता सकते हैं जिसको हम देखकर ये पता कर सके कि हमारा घर भूकंप के जोखिम से बच सकता है?
तो इसमें सबसे पहला ये देखा जाए कि घर में कहीं पे कोई दरारें तो नहीं है। दीवारों में अगर दीवारें लोड बेयरिंग है, जो नॉर्मली जो ब्रिक स्ट्रक्चर होता है उसमें दीवारें ही आपका भार को सहन करती हैं, जो रेनफोर्स कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर है उसमें मोस्टली बीम और जो कॉलम होते हैं कॉन्क्रीट के और स्टील के वो भार को सहन कर सकते हैं। जो लोड बेयरिंग वॉल्स हैं अगर उसमें क्रैक है तो वो भार को अच्छे से सहन नहीं करेगी और अर्थक्वेक आने की स्थिति में टूट सकती है। तो अगर आपके घर में कोई ऐसी दीवार है या छत है जहां पे क्रैक आ रहा है तो आपको उसकी मरम्मत करवानी चाहिए। दूसरा ये कि अगर बहुत ही पुराना स्ट्रक्चर है आपका और आपको लगता है कि जो ईटे है उनका जो मोटर के साथ में अच्छा कनेक्शन नहीं है या मोटर बहुत अभी पुराना हो चुका है तो आप उसको रेट्रोफिटिंग करवा सकते हैं। या फिर आपके अगर घर के नीचे बहुत ज्यादा हाई राइज वाटर टेबल है तो आपको पता होना चाहिए कि आपके घर के नीचे अगर सैंड है या फिर रेत जिसको बुलाता है वाटर टेबल बहुत हाई है तो एक लिक्विफेक्शन करके एक फिनोमिना है वो डेवलप हो सकता है। इसकी वजह से पूरा घर जो है वो इट विल जो घर के नीचे फाउंडेशन है वो बिल्कुल लिक्विड की तरह बिहेव करेगी तो वो भी एक बहुत बड़ा खतरे का निशान है। तो ये सारी चीजें जो है लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए। तो घर की एज, उसमें कितने क्रैक हैं, पानी का लेवल कहाँ पे है और घर के नीचे अगर कोई लूज सैंड में आपका घर बना हुआ है तो वो ज्यादा खतरे की जद में है अर्थक्वेक की वजह से।
बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी आज हमसे जुड़ने का और हमें इतनी अहम जानकारी देने का।
धन्यवाद जी, थैंक यू।
हमसे जुड़िए जब आप चाहें SBS हिंदी पॉडकास्ट कलेक्शन, SBS ऑडियो ऐप, SBS साउथ एशियन के यूट्यूब चैनल या फिर थर्ड पार्टी पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म जैसे Spotify पर। आप हमें लाइव सुन सकते हैं हर शाम 5 बजे डिजिटल रेडियो टीवी चैनल 305 SBS ऑन डिमांड या फिर हमारी वेबसाइट पर भी।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।